कल के दिन ही मंथन और आयु की शादी होने वाली थी। अयान और माहिरा को यही लगा था कि संगीत सेरेमनी के टाइम जब आरव आयु और मंथन को साथ डांस करते देखेगा, तब उसे उन्हें देखकर जलन होगी। वो कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद सबको यही लगेगा कि आरव आज भी आयु से प्यार करता है। आयु को भी आरव के गलती करने का इंतजार था। उन दोनों को साथ में देखकर आरव को गुस्सा जरूर आया था, पर उसने कोई तमाशा नहीं किया। वो तुरंत वेन्यू से दूर चला गया था। आरव की इस हरकत पर माहिरा और अयान बहुत निराश हुए थे, जबकि आयु को उस पर गुस्सा आ रहा था। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरव को क्या हो गया है। गुस्से में आयु ने भी कह दिया था कि वो मंथन से शादी कर लेगी। अयान ने आयु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उनसे गुस्सा होने की वजह से कोई ऐसी हरकत मत करो जिसके बाद तुम्हें ही पछतावा हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम भाई के भरोसे मत रहो और शादी से इनकार कर दो। पहले ही ये तमाशा बहुत आगे बढ़ गया है। माहिरा ने भी अयान की बात पर सहमति जताते हुए आयु से कहा, अयान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आरव की जिद और गलतफहमी के चलते तुम्हें खुद की लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद मॉम डैड मेरी सुनेंगे। वो पहले से ही मुझसे नाराज रहते हैं, आयु ने सुबकते हुए कहा। तो फिर दोबारा एक ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ तुम्हारा आरव से कोई कॉन्टैक्ट ना हो। इस तरह तुम इस शादी से भी बच जाओगी और आरव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, माहिरा ने आइडिया दिया। अयान भी उसकी बात पर सहमत था। उनकी बातें सुनकर आयु को बस इस वक्त गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ वापस आने का शौक था? मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन उस पागल आरव ने मेरी मॉम को बुलाकर मुझे यहाँ लुधियाना भिजवा दिया। वो अच्छे से जानता था कि मॉम डैड के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आयु झुंझलाकर दोबारा चिल्लाई। अगर आरव इस वक्त उसके सामने होता तो वो उसके बाल नोच लेती या उसका सर फोड़ देती, आयु ने दांत भींचते हुए कहा। इतना कुछ करके भी उसका मन नहीं भरा जो मंथन का रिश्ता लेकर यहाँ पहुँच गया। आई स्वेयर, अगर मुझे उस आदमी से प्यार नहीं होता तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लेती, फिर चाहे मुझे अपने बाकी की जिंदगी जेल में भी क्यों ना बितानी पड़ती। तुम्हारा गुस्सा हमें समझ आ रहा है, पर कल तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये शादी तुम्हें घुटन के अलावा और कुछ नहीं देगी। एक बार फिर सोचना, अगर तुम्हें यहाँ से दूर जाना है तो मैं ले जाऊंगा, पर गुस्से में कोई फैसला मत करना, अयान ने अपनी तरफ से आयु की मदद करने का आश्वासन दिया। कोई भी और रिश्ता होने से पहले वो उसकी दोस्त थी और इस नाते वो उसे इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता था। माहिरा भी उसका साथ देने के लिए तैयार थी। जहां एक तरफ आरव की हरकतों की वजह से आयु गुस्से में थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरव ना जाने अचानक से कहां गायब हो गया था। आखिर वो दिन भी आ गया था जब आयु और मंथन की शादी होने वाली थी। कल रात के बाद से ही आरव गायब था। अयान ने उसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। अयान के इतना समझाने के बावजूद आयु ने आरव पर यकीन किया और शादी के लिए तैयार होने के लिए चली गई थी। बट अब कुछ ही घंटे का समय बचा था। शाम के करीब आरव का मोबाइल फिर से ऑन हुआ तो अयान ने तुरंत उसे कॉल किया। आरव ने कॉल रिसीव किया और थके हुए स्वर में कहा, कोई काम है तो बताओ, मुझे बेवजह का लेक्चर नहीं सुनना है। आप कहाँ गायब हैं? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं? आखिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? एक तरफ आप नहीं सुन रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे इतना बोलने के बाद आयु मानने को तैयार नहीं है। भाई, कुछ घंटे में उनकी शादी हो जाएगी और फिर कुछ नहीं बचेगा, अयान ने आरव को समझाने की कोशिश की। वैसे भी अब कुछ नहीं बचा है, उसे उसकी खुशियाँ मिलने जा रही हैं, तो बीच में टांग मत अड़ाओ, आरव ने सख्त आवाज में कहा। अभी तक तो कुछ खत्म हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर में जरूर हो जाएगा, अयान ने कहा। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अयान ने गहरी सांस ली और आरव से पूछा, ठीक है, आपको मेरी बात नहीं सुननी ना, तो कोई बात नहीं, मुझे बताओ आप कहाँ हो? आप तो अपनी आंखों के सामने ये शादी होते हुए देखना चाहते थे, अब अचानक कहाँ गायब हो गए? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे मंथन के साथ शादी करते देख सकूं। यहीं के एक होटल में रुका हुआ हूँ, चेकआउट करके बस निकलने वाला हूँ, आरव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। आरव के चेहरे पर मायूसी के भाव थी और उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हाल में देखे और ये समझे कि वो आज भी आयु से प्यार करता है। काश मैंने उस रात तुम्हें मंथन के साथ नहीं देखा होता, या काश उस दिन तुम उसके साथ होती ही नहीं, पर यही डेस्टिनी है। तुम दोनों तो हमेशा से ही साथ थे, मैं बीच में आया था, आरव ने अपने आंसू साफ करके कहा। आरव ने यही सोचा था कि वो आयु को अपनी आंखों के सामने शादी करते देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि अब वो उसकी नहीं रही, लेकिन जब उसने कल रात उन दोनों को साथ देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा था जब उसने मंथन और आयु को बेड पर देखा था। अगर वो दोनों नॉर्मली साथ होते तो आरव इसे अपनी गलत फहमी समझकर अपने दिल को समझा लेता, लेकिन उसने उनके बीच बहुत कुछ होते हुए देखा था। अयान और माहिरा की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। वो दोनों भी शादी अटेंड करने के बजाय यहाँ से जाना चाहते थे कि तभी उनकी मुलाकात गौरवी जी से हुई। तारा की जिद करने पर गौरवी जी शादी अटेंड करने के लिए वहां पहुंची थी। जैसे ही उन्होंने अयान और माहिरा को वहां देखा तो वो सब समझ गई थी। गौरवी
अरवी जी ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को साफ मना किया था कि तुम इस शादी से दूर रहोगे। मेरे मना करने के बावजूद तुम दोनों यहाँ आ गए। लिसन, शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
दादी, हम शादी में कोई गड़बड़ करने नहीं आए हैं, हम तो बस आयु की हेल्प करना चाहते हैं, माहिरा ने मायूस आवाज में कहा।
कैसी हेल्प? वो इस शादी से खुश है? फिर तुम दोनों कहीं आरफ के चक्कर में फिर से उसका मन बदलने तो नहीं आ गए हो? गौरवी जी ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले वो भी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन आरफ के सच बताने के बाद गौरवी जी ने भी सच को स्वीकार कर लिया था।
नहीं दादी, आयु इस शादी से खुश नहीं है। इनफैक्ट वो तो आरफ के जबरदस्ती करने की वजह से यहाँ फंस गई है। बेचारी को अभी भी उम्मीद है कि आरफ यहाँ आकर उसकी शादी रोकेगा और उसे अपने साथ लेकर जाएगा, माहिरा ने बताया।
अयान ने माहिरा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, काश मैं उसे समझा पाता कि भाई के चक्कर में वो बेवजह अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। वो नहीं आने वाले हैं। मैंने उसे समझाया था कि उसे मेरे साथ चलना चाहिए, पर वो मेरी सुन नहीं रही है। बस हाँ कर दे, मैं उसे साथ लेकर वापस न्यूजीलैंड चला जाऊंगा।
गौरवी जी गौर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन दोनों के बोलते ही वो सख्त आवाज में बोली, हो गया तुम दोनों का। सिर्फ आयु का सोचकर तुम डिसीजन कैसे ले सकते हो? और पूरी बात जाने बिना आरव को इतना कुछ गलत कैसे समझ सकते हो?
आरव गलत नहीं कर रहा है, वो बस ये आयु की खुशी के लिए कर रहा है। शायद आयु अपनी लाइफ में कंफ्यूज है और आरव की वजह से उसे क्लियर होने का मौका मिलेगा।
तो क्या आपको पता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अयान ने तुरंत पूछा। गौरवी जी की बातों से यही जाहिर हो रहा था कि वो आरव के ऐसा करने का रीजन जानती है।
गौरवी जी ने हल्के से सिर हिला दिया था। उन्होंने दबी आवाज में कहा, आयु हमेशा से अपनी लाइफ में कंफ्यूज रही है। वो मंथन से प्यार करती थी, लेकिन आरव की जिद की वजह से उसके साथ रहने को मंजूर थी। आरव ने ये फैसला लिया है क्योंकि, बोलते हुए गौरवी जी एक पल रुकी और फिर उन्होंने आंखें बंद करके मायूस स्वर में कहा, उसने आयु और मंथन को साथ में देखा था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके बीच वो दोनों एक बेड पर। गौरवी जी जिस तरह पूरी बात कहने से हिचक रही थीं, उनकी आधी अधूरी बात सुनकर ही अयान को समझ आ गया था। वो उनकी बात बीच में काटते हुए, दांत पीसते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? क्या भाई को सच में लगता है आयु ऐसा कर सकती है? कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता और मुझे समझ नहीं आता, आखिर भाई ने आयु को मंथन के साथ कब देख लिया? मैं मान ही नहीं सकता। जब से भाई ने आयु को छोड़ा है, मैं एनी टाइम उसके साथ रहता हूँ। आयु कभी ऐसा नहीं करेगी, मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। अगर वो मंथन को पसंद करती भी होती तब भी आकर साफ साफ बताती, इस तरह की हरकत कभी नहीं करती। जानती हूँ तुम उसके दोस्त हो तो उसका पक्ष लोगे। सुनकर मुझे भी अजीब लगा था, पर आरव झूठ क्यों बोलेगा? इवेंट की रात उसने उन दोनों को साथ में देखा है, तब से वो बिखर सा गया है। उसने बताया था कि वो आयु से उसका डिसीजन सुनने के लिए उनके कमरे में गया था और वहीं पर उसने ये सब देखा। गौरवी जी ने बातों बातों में उन्हें सब बता दिया था। अयान उस रात के हर एक लम्हे के बारे में फिर से सोच रहा था। जैसे ही गौरवी जी की बात खत्म हुई, अयान ने नामे सिर हिलाकर कहा, उन्हें सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दादी। उस रात आयु मेरे साथ थी, भाई उसे कैसे मिल सकते हैं जब वो वेन्यू पर मौजूद ही नहीं थी। हाँ मुझे पता है, उसने भाई को प्रॉमिस किया था कि वो इवेंट के बाद उन्हें उनके रिश्ते को लेकर एक फैसला करने वाली है। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी, पर अचानक से उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दादी, आप चाहो तो मैं हॉस्पिटल का CCTV फुटेज और हमारे विजिटिंग पास तक आपको दे सकता हूँ। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ने उसे मंथन के साथ देखा था? अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि आरव ने एक छोटी सी गलतफहमी के चलते ये सब किया था। उसने सिर पकड़कर कहा, वो बेचारी तो जानती तक नहीं है कि आखिर किस गलती की भाई उसे सजा दे रहे हैं। एक बार आकर वो हमसे बात तो करते। उसे पूरी रात अफसोस हो रहा था कि वो उनसे बात नहीं कर पाई। उसने कॉल भी करना चाहा था, पर मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा आउटकम निकल कर आएगा। वो इतनी उम्मीद के साथ दूसरे दिन भाई के साथ गई थी, जबकि वो उसे बिना सच जाने लॉयर के पास ले गए और डिवोर्स करवा दिया। न जाने उसके बाद से क्या क्या कर रहे हैं। अगर आयु को पता चला तो उसे और भी बुरा लगेगा। जैसे ही अयान ने सारा सच बताया, माहिरा और गौरवी जी बुरी तरह चौंक गए थे। अयान झूठ नहीं बोल सकता था, ऊपर से वो यहाँ तक दावा कर रहा था कि वो सबूत दे सकता है, तो इस मामले को लेकर आरफ को ही गलतफहमी हुई थी। गौरवी जी के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए थे। वो ये शादी रोकना चाहती थी, लेकिन अब शायद समय निकल चुका था। आरफ कहाँ है? बात करो उससे, उसे सब कुछ बताओ। ये शादी नहीं हो सकती है। कुछ करो अयान, प्लीज कुछ करो, वरना आरव जिंदगी भर अफसोस में रहेगा, गौरवी जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अयान से इस बारे में पहले बात क्यों नहीं की। गौरवी जी के कहने पर अयान आरव को कॉल कर रहा था, लेकिन आरव बार बार उसका कॉल कट कर रहा था। वो होटल से चेकआउट करके चंडीगढ़ वापस जाने के बारे में सोच रहा था। तो आरव ना सही, गौरवी जी के सामने सच आ गया है तो अब आरव को पता चल ही जाएगा।
मिलते हैं अगले भाग पर। स्टे ट्यून्ड।